प्रभु जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, 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 प्रभु जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार।
परमात्मा की श्री चरणों का सेवादार हो जाना, सारे संसार का सेवादार हो जाना, अर्थात परमात्मा के साकार रूप का सेवादार हो जाना ही भक्ति है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने आज भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का वर्णन किया है। 18 अध्यायों में से साधक चुनो 2 अध्याय सबसे छोटे हैं, 1 12वां और 1 15वां, दोनों 20-20 श्लोकों के अध्याय हैं। इन दोनों में से भी 12वां अध्याय अक्षरों की दृष्टि से छोटा है, सबसे छोटा अध्याय और बहुत मार्मिक अध्याय। संत महात्मा व्याख्याकार ठोक भुजा की कहते हैं, जो इस अध्याय में वर्णन किया गया है, जो साधक अपने जीवन में आंशिक रूप से भी उसे उतार लेता है तो उसका उद्धार होके रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 12वां अध्याय, अनन्य भक्ति के लक्षण वर्णन किए हैं। क्या चिन्ह अनन्य भक्त के अंदर आ जाते हैं, कैसा भक्त मुझे प्रिय है, घोषणा करते हैं। जिस जिस में ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं वह भक्त मुझे प्रिय है। भगवान बता रहे हैं, मेरा प्यारा बनना चाहते हो तो ये सद्गुण आपके अंदर आने चाहिए। शत्रु एवं मित्र के प्रति एक जैसी सद्भावना, क्या कमाल का गुण है। मानो कोई शत्रु सामने दिखाई ही नहीं देता, सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। नीचे की बात करो दो परमात्मा के बंदे, वास्तविक बात करो, सत्य की बात करो तो सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। इससे पिछले अध्याय में ही साधकों 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप के माध्यम से यही स्पष्ट किया है, संसार मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही संसार का रूप धारण किए हुए हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण साकार रूप भगवान श्री राम साकार रूप, नारायण साकार रूप, भगवान शिव साकार रूप, ऐसे ही संसार भी परमात्मा का साकार रूप है। ये बहुत उच्च बात है साधक चलो। जन्म जन्मांतरों की भक्ति के बाद ऐसा बोध होता है और ऐसी दृष्टि मिलती है जब इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी दृष्टि हो जाती है, ये भक्ति का ही कमाल है। मन के शुद्धिकरण का अचूक साधन भक्ति। आज उसी भक्ति का भगवान ने वर्णन किया है। एक दृष्टांत शुरू करते हैं साधक जनों। उस दृष्टांत के अंतर्गत ऐसा लगता है कि भगवान द्वारा वर्णित सभी गुण एक एक करके आ जाएंगे। दो तीन दिन लगेंगे उसे समाप्त करते हुए, आज शुरू करते हैं। एक सम्राट है इब्राहिम, कालांतर में यही संत इब्राहिम बना है। कहते हैं अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा तो सिर्फ राजा बनाने तक ही सीमित नहीं रहती। हर व्यक्ति जानता है ये सब कुछ भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हैं, कोई ठेकेदार बनता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर इत्यादि इत्यादि, कोई शहनशाह बनता है, कोई बहुत संपन्न तो कोई बहुत विपन्न बनता है, ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। इसे परमात्मा की कृपा कभी ना मानिएगा। परमात्मा की कृपा तो बहुत उच्च चीज है, वह बहुत बड़ी चीज है, बड़ी विलक्षण चीज है। जिस पर हो जाती है, श्रीमद् भागवत कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन छीनता हूं। मानो उसकी संपन्नता छीनता हूं, मानो उसके अंदर से पहले मैं संसारिकता निकालता हूं, तो फिर उसके अंदर मैं अपने आप को भर देता हूं। अभी तो हम फुल हैं, उस संसारिकता से इतने फुल हैं कि हमारे भीतर परमेश्वर के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। वी हैव नो रूम फॉर हिम। इतना कूड़ा करकट हमने अपने अंदर भर रखा हुआ है, संसार का मोह ममता इतनी फैला रखी हुई है कि यहां पर परमात्मा के प्रति मोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रीति की कोई गुंजाइश नहीं है। इब्राहिम सवामन फूल की शैया पर सोता है। समझिएगा कि 50 से 1 किलो फूल हुए आज के हिसाब किताब से। रोज उसकी शैया पर इतने फूल बिछते हैं और राजाधिराज उस पर रात्रि को विश्राम करते हैं। एक देवी रखी हुई है, दासी रखी हुई है, अनेक होंगी, लेकिन शैया बनाने वाली एक्सपर्ट एक है। इसे अनेक वर्ष हो गए हैं राजा साहब की शैया तैयार करते हुए। फूल बिछाती है, नीचे कुछ बिछाती होगी, बीच में फूल, फिर ऊपर कुछ और, फिर कुछ और इत्यादि इत्यादि। ऊपर तो कोई रेशमी चादर ही होती होगी। उस पर राजाधिराज सोते हैं। गरीब आदमी के अंदर भी तो साधक चुनो दिल होता है, मन होता है, सब कुछ होता है। आज बेचारी का मन थोड़ा फिसल गया। राजा साहब 10 बजे से पहले सोने के लिए नहीं आते। मैं बिछाती हूं ये बिस्तर, इतने वर्षों से कभी लेट के नहीं देखा इसके ऊपर। आज इस पर अभी 8 ही बजे हैं, मेरा यूजुअल टाइम है बिस्तर बनाने का, शैया तैयार करने का मैंने कर दी है। अभी राजा साहब के आने में 2 घंटे का समय है, तब तक सो के देख लेती हूँ। उनके आने से पहले ही मैं बाहर निकल जाऊँगी ताकि वो मुझे देख ना सके। ये परमेश्वर की कृपा देखिएगा, किन किन साधनों से जिस पर वह कृपा देवी करना चाहता है, कैसे कैसे कड़े साधन, कैसे कैसे दूसरी तरह के साधन, किस किस प्रकार के वह साधन अपनाता है अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपना बनाने के लिए। ये है परमात्मा की वास्तविक कृपा। आज देखो किसके ऊपर ये कृपा होने जा रही है। देवी दासी हिम्मत करके तो शैया पर लेट गई है, गुदगुदा मुलायम बिस्तर लगा, नींद आ गई, आंख लग गई, आंख लग गई। 1 घंटा व्यतीत हुआ, 10 बजे राजा साहब पधारे हैं। देखा कि ये दासी मेरे शैया पर सो रही है। हुक्म दिया, हंटर मंगवाए, कूड़े मारे गए उस दासी को जगाने के लिए, उस दासी को डांटने डपटने के लिए। कहते हैं उन कोड़ों की बहुत पीड़ा हुआ करती है। और देशों का पता नहीं साधक जनों, सिंगापुर में भी यदि कोई अपराध करता है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं। उनकी पीड़ा इतनी अधिक होती है कि इतनी जल्दी कोई अपराध करने का साहस नहीं करता, इसलिए सिंगापुर में अपराध बहुत कम है। इस बिचारी को कोड़ों से पीटा गया है, बेबस कुछ कर नहीं सकती, ऊंचे जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है। थोड़ी ही देर के बाद अपना चिल्लाना बंद करके तो हंसना शुरू कर दिया है। राजा साहब ने हंटर फेंका, जिसे मारना था वो चाबुक जो भी है उसे कहते हैं, उसे फेंका। पूछा, पहले रो क्यों रही थी और अब हंस क्यों रही हो? कहा, राजा साहब मेरे से भूत बड़ी भूल हो गई है, मुझे आपकी शैया पर लेटना नहीं चाहिए था, उसकी आपने मुझे सजा दी, कोड़े मारे अपने हाथ से। सामान्यतः आपके नौकर चाकर जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वह कोड़े मारते हैं, आपको तकलीफ करनी पड़ी मेरे कारण, मेरी भूल के कारण। पीड़ा इतनी थी कि मेरे पास रोने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। हंसी क्यों? हंसी इसलिए राजा साहब, 2 घंटे इस बिस्तर पर लेटने से यदि मुझे कोड़े पड़ सकते हैं, आप वर्षों से इस बिस्तर पर सो रहे हो, आपका क्या हाल होगा? राजा साहब ने इतनी बात सुनी, पांव से लेके तो सिर तक कपकपी सी छा गई। ये आज परमात्मा ने अपनी कृपा का पहला झटका इब्राहिम को दिया है। मानो तैयारी शुरू हो गई, इस इब्राहिम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए परमात्मा प्रयत्नशील है, ढंग है देवी करने के, तो वे सब कुछ तत्काल कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली कर सकते हैं, लेकिन अपना ढंग अपनाते हैं, अपने विधान के अनुसार उसी में परमात्मा रहना ठीक समझते हैं, हमें सिखाने के लिए कि अपने जीवन को डिसिप्लिन रखो, अपने जीवन को अनुशासन में रखो, जहां कहीं फिसलोगे वहां फिसल जाओगे, ऐसी गलती ना करना, मैं कभी नहीं करता। सो परमात्मा ने अब्राहिम को आज पहला झटका दिया है। अपनी छत पर, महल की छत पर आज टहलने के लिए बादशाह सलामत गए, देखा तो वहां दो चार व्यक्ति पहले ही टहल रहे, ये कौन है, ये कहां से आ गए, किसने इनको मेरे महल में प्रवेश करने की इजाजत दी, परिचय पूछा, भाई लोगों आप कौन हो, हम साहूकार हैं, ट्रेडर्स, यहां कैसे, राजा साहब हमारे ऊंट गुम हो गए हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं, कितनी असंगत सी बातें हैं, कोई संगति नहीं है इन बातों में, ऊंट और महल की छत पर ढूंढ रहे हो आप, क्या मूर्ख हो, राजा साहब ने पूछा, कहा ऊंट महल में कैसे प्रवेश करेंगे और फिर महल की छत पर आप ढूंढ रहे हो, यहां तक ऊंट कैसे पहुंच सकेंगे, क्या ये बात संभव है, राजा साहब यदि ये संभव नहीं है तो सवामन फूलों की सेज पर सोते रहने से परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं है। आज परमात्मा ने दूसरा झटका अपनी कृपा का दे दिया। मैंने अर्ज करी ना, परमात्मा की कृपा के, परमात्मा के झटके देने के नवीनतम साधन, बड़े विलक्षण साधन, सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। जब परमात्मा किसी को संसार से हटा के तो अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है, जब आपके पांव क्लबों की तरफ न जाके तो सत्संगति की ओर मुड़ने लग जाए, तो समझ लीजिएगा परमात्मा की कृपा का शुभारंभ आपके जीवन में हो गया है। इस वक्त लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वर्षा का दिन है, इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे, आप इतने सारे यहाँ आए हो तो ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा अपने साथ आपका प्रेम डलवाना चाहता है संसार और संसारिकता से प्रेम तोड़ के तो मेरे साथ प्रेम जोड़िएगा। मैं तोड़ने के लिए नहीं कहता, आप ये नहीं कर पाओगे, मैं मात्र इतना कहता हूं मेरे साथ प्रेम जोड़ो, तोड़ने का काम मैं खुद कर लूंगा, आप मेरे साथ प्रीति जोड़ो, सत्संगति में आना, यहां आके जप करना, अधिक से अधिक जप करना, धन्य है वह साधक साधकजनों जो सारी सारी रात बैठ के तो जप करते हैं, सोचें कितनी प्रीति कितनी लगन उनके अंदर परमात्मा ने भरी होगी, जिसके कारण वे सारी सारी रात बैठ के तो राम 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 जपते हैं, क्या ये आसान बात है, नहीं, ये परमात्मा की कृपा का साक्षात प्रमाण है। उसकी कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना, उसके दिए हुए समर्थ के बिना सारी रात बैठ के कोई राम राम नहीं जप सकता। हाँ, टीवी तो देख सकता है, टीवी पर पूरा सारी रात देखा जा सकता है, जुआ ताश इत्यादि सारी रात ये खेला जा सकता है, कोई और प्रोग्राम हो इत्यादि इत्यादि किया जा सकता है, लेकिन सारी रात बैठ के राम राम जपना ये परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जारी रखेंगे साधक जी ने इस चर्चा को कल, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।